एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल, ये हमारे खाने की मेज से लेकर हमारे घरों में जो साथी जानवर हैं, पालतू जानवर, उन तक फैला हुआ है।
सही कहा। आज हम बात करेंगे जानवरों के अधिकारों की और उनके प्रति हमारी, मतलब इंसानों की, नैतिक जिम्मेदारियों की।
जी, और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं डेविड डिघैजिया की किताब एनिमल राइट्स को। ये किताब हमें चुनौती देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जानवरों के बारे में कैसे सोचते हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं।
हाँ, और ये सवाल आज मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गए हैं, है ना?
बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ हम अपने पालतू जानवरों से, कुत्तों बिल्लियों से कितना प्यार करते हैं, उन्हें परिवार का सदस्य मानते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
और दूसरी तरफ वहीं खाने के लिए या दूसरे कामों के लिए जो जानवर इस्तेमाल होते हैं, उनकी तकलीफों के बारे में हम शायद उतना नहीं सोचते। ये एक अजीब सा विरोधाभास है।
हाँ, ये विरोधाभास क्यों है, यही सवाल डिघैजिया उठाते हैं ना?
जी।
उनकी किताब सिर्फ भावनाओं की बात नहीं करती, वो तर्क और दर्शन के आधार पर हमें एक ढांचा देती है कि जानवरों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी मुश्किल, कह सकते हैं, बहस में उतरते हैं।
जरूर। तो शुरुआत करते हैं लेखक से। ये डेविड डिघैजिया कौन है, मतलब इस विषय पर उनकी बात में वजन क्यों माना जाए?
देखिए, डेविड डिघैजिया अमेरिका के एक जाने माने दार्शनिक हैं, खासकर बायोएथिक्स यानी जैव नीति शास्त्र के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है।
बायोएथिक्स, हाँ, वो जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और नैतिकता से जुड़े जो मुश्किल सवाल होते ना, उन पर काफी लिखते रहे हैं। इसमें मेडिकल एथिक्स भी है और पशु नैतिकता, एनिमल एथिक्स भी शामिल है।
अच्छा, तो मतलब वो सिर्फ किताबी बातें नहीं करते, बल्कि असल दुनिया की जो नैतिक उलझने हैं उनमें भी उनकी पकड़ है।
हाँ बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। वो सिर्फ जानवरों के लिए एक भावुक अपील नहीं करते, बल्कि बहुत बारीकी से तर्क के साथ अपनी बात रखते हैं। उनकी एक और किताब है टेकिंग एनिमल्स सीरियसली, जो जानवरों की मानसिक दुनिया और उनके नैतिक दर्जे पर है। डिघैजिया का नजरिया आमतौर पर संतुलित माना जाता है। वो पशु अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही इस पूरी बहस की जो जटिलताएं हैं उनको भी समझते हैं। मतलब वो विरोधी तर्कों को भी नजरअंदाज नहीं करते, उन्हें भी गंभीरता से लेते हैं।
अच्छा, ये अच्छी बात है, यानी हमें एक सोचा समझा तार्किक नजरिया मिलने वाला है, ना कि सिर्फ एक तरफा वकालत। तो अब आते हैं किताब पर, एनिमल राइट्स, इसका मुख्य मुद्दा क्या है, ये किताब आखिर कहना क्या चाहती है?
देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब ये तर्क देती है कि जानवरों को भी नैतिक दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है। किताब का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि कई जानवरों के भी अपने हित होते हैं, इंटरेस्ट्स होते हैं, जैसे दर्द से बचना, खुशी महसूस करना, और इन हितों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए।
पर जानवरों के अधिकार, ये सुनने में कई लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि जानवरों को इंसानों जैसे अधिकार मिल जाने चाहिए, जैसे वोट देने का अधिकार या?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। डिघैजिया ये नहीं कह रहे हैं। देखिए, उनका तर्क है कि अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि प्राणी किस तरह का है। इंसानों के अधिकार अलग तरह के होते हैं, जानवरों के अलग होंगे।
हाँ, वो तो है,
लेकिन मूल बात ये है कि जानवरों के कुछ बुनियादी अधिकार होने चाहिए जो उनकी प्रकृति के अनुरूप हों, जैसे बेवजह पीड़ा न झेलने का अधिकार या अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार। और इन अधिकारों का आधार उनकी प्रजाति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए।
महसूस करने की क्षमता, आप संवेदना या सेंशंस की बात कर रहे हैं, यही वो शब्द है जो इस पूरी बहस में बार बार आता है ना?
बिल्कुल, यही डिघैजिया का मुख्य तर्क है कि नैतिक रूप से महत्वपूर्ण होने का पैमाना कोई जटिल सोच या भाषा नहीं है, बल्कि संवेदना है। यानी सुख, दुख, दर्द, डर, खुशी, इन जैसी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता।
अच्छा,
अगर कोई प्राणी ये सब महसूस कर सकता है तो उसके साथ क्या हो रहा है, ये उसके लिए मायने रखता है ना?
हाँ बिल्कुल।
और अगर ये उसके लिए मायने रखता है तो नैतिक रूप से ये हमारे लिए भी मायने रखना चाहिए। ये उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है जो सिर्फ इंसानों को केंद्र में रखती है, जिसे मानव केंद्रित सोच या एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहते हैं।
ठीक है, तो किताब का ढांचा कैसा है, मतलब वो हमें इस नतीजे तक कैसे पहुंचाती है?
किताब काफी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। पहले वो नैतिक स्थिति यानी मॉरल स्टेटस की बात करती है कि भाई नैतिक दायरे में कौन आता है और क्यों आता है। फिर वो जानवरों की जो मानसिक क्षमताएं हैं, उनकी संवेदना है, उसके वैज्ञानिक सबूतों पर बात करती है।
अच्छा, सबूत भी देती है।
हाँ बिल्कुल। फिर इसके बाद वो अलग अलग नैतिक सिद्धांतों को देखती है, जैसे उपयोगितावाद है, अधिकार सिद्धांत है, और ये देखती है कि ये सिद्धांत जानवरों पर कैसे लागू होते हैं,
और फिर इन सिद्धांतों का व्यावहारिक इस्तेमाल भी बताती होगी।
हाँ बिल्कुल। वहीं पर बात असल मुद्दों पर आती है। किताब इन सिद्धांतों को फैक्ट्री फार्मिंग यानी औद्योगिक पशुपालन पर लागू करती है, जानवरों पर होने वाले वैज्ञानिक शोध पर लागू करती है, मनोरंजन में जानवरों के इस्तेमाल जैसे सर्कस या चिड़ियाघर, शिकार, और यहाँ तक कि हमारे पालतू जानवरों के संदर्भ में भी देखती है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड भी है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं नैतिक स्थिति और संवेदना वाले विचार से। किताब क्या कहती है कि जानवर नैतिक दायरे में क्यों आने चाहिए? ठोस तर्क क्या है?
डिग्राजिया एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, नैतिक कर्ता यानी मॉरल एजेंट्स और नैतिक रोगी यानी मॉरल पेशेंट्स के बीच।
नैतिक कर्ता और नैतिक रोगी, ये क्या है?
नैतिक कर्ता वो है जो सही गलत समझ सकते हैं और अपने कामों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे हम वयस्क इंसान। नैतिक रोगी वो हैं जिनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं, भले ही वो खुद कर्ता न हो।
जैसे
हम लोग, वो नैतिक कर्ता नहीं है पर उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां तो है ना।
हाँ बिल्कुल है।
तो जानवर,
तो ज्यादातर जानवर नैतिक कर्ता नहीं है पर वो नैतिक रोगी जरूर है। और क्यों है? क्योंकि वो महसूस कर सकते हैं। किताब विज्ञान का सहारा लेती है, न्यूरोसाइंस, व्यवहार विज्ञान, ये दिखाने के लिए कि भाई कई जानवर, खासकर स्तनधारी मैमल्स और पक्षी, वो दर्द, डर, खुशी, ये सब महसूस करते हैं।
अच्छा।
उनकी याददाश्त होती है, वो सीखते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये सोचना कि वो सिर्फ चलती फिरती मशीनें हैं, ये वैज्ञानिक रूप से एकदम गलत है। और अगर वो दर्द महसूस कर सकते हैं तो दर्द से बचना उनका एक बुनियादी हित हुआ जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
यहीं पर वो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मार्जिनल केसेस वाली बात आती है। सही कहा ना मैंने? वो तर्क क्या है अगर सरल शब्दों में समझाना हो? हाँ हाँ बिल्कुल। सीमांत मामलों का तर्क, ये एक बहुत दमदार तर्क माना जाता है। ये कहता है, सोचिए अगर हम इंसानों को नैतिक अधिकार सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम सोच सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं, तो फिर उन इंसानों का क्या जिनमें ये क्षमताएं कम हैं, जैसे नवजात शिशु या वो लोग जो गंभीर दिमागी विकलांगता के साथ जी रहे हैं? हम तो उन्हें भी पूरे नैतिक अधिकार देते हैं ना। उनके साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करते?
हाँ बिल्कुल नहीं करते, उन्हें तो शायद ज्यादा सुरक्षा देते हैं।
बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है, अगर हम इन सीमांत इंसानों को उनकी कम मानसिक क्षमताओं के बावजूद अधिकार देते हैं तो हम उन जानवरों को अधिकार क्यों नहीं देते जिनकी मानसिक क्षमताएं शायद इन इंसानों के बराबर या उनसे ज्यादा हों?
जैसे?
जैसे शायद एक स्वस्थ सुअर या कुत्ता एक नवजात शिशु से दुनिया के बारे में ज्यादा जागरूक हो, या शायद किसी गंभीर रूप से अक्षम इंसान से ज्यादा। तो ये तर्क हमारे दोहरे मापदंड पर सवाल उठाता है, क्या हम सिर्फ इसलिए भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी प्रजाति के नहीं है? इसी को डिग्रासिया और अन्य विचारक प्रजातिवाद, स्पीशिज्म कहते हैं, यानी अपनी प्रजाति को बिना किसी ठोस नैतिक कारण के दूसरों से ऊपर मानना। वो कहते हैं ये उतना ही गलत है जितना नस्लवाद या लिंग भेद।
बापरे, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हमारे अपने जो पूर्वग्रह हैं वो सामने आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद किताब नैतिक सिद्धांतों पर आती है। उपयोगितावाद, अधिकार सिद्धांत, इनका जानवरों से क्या लेना देना है?
देखिए, डिग्रासिया इन सिद्धांतों को एक तरह के औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि जानवरों के साथ कैसा बर्ताव नैतिक होगा। उपयोगितावाद, जो जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल से जुड़ा है, वो कहता है कि हमें वो काम करना चाहिए जिससे कुल मिलाकर खुशी बढ़े और दुख कम हो।
अच्छा,
तो अगर जानवर भी सुख दुख महसूस करते हैं तो उनके सुख दुख को भी इस हिसाब किताब में शामिल करना चाहिए। पीटर सिंगर जैसे जो बड़े विचारक हैं पशु अधिकारों के, वो इसी उपयोगितावादी आधार पर जानवरों के हितों की बात करते हैं।
और अधिकार सिद्धांत, वो इससे अलग कैसे है?
अधिकार सिद्धांत जैसे टॉम रीगन ने दिया, वो थोड़ा अलग है। वो ये कहता है कि कुछ प्राणियों के, जिनके पास एक खास तरह की चेतना होती है, उनके कुछ बुनियादी अधिकार होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार या शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इन अधिकारों को सिर्फ इसलिए नहीं छीना जा सकता कि इससे दूसरों को ज्यादा फायदा होगा, मतलब अंत साधन को सही नहीं ठहराता।
तो डिग्राजिया इन दोनों में से किसे मानते हैं?
डिग्राजिया असल में इन दोनों से कुछ कुछ बातें लेते हैं, वो पूरी तरह किसी एक कैंप में नहीं है। वो कहते हैं कि जानवरों के हितों को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, उनके जैसे हितों को इंसानों के हितों के बराबर महत्व देना चाहिए, समान हितों के लिए समान विचार।
लेकिन
वो शायद ये भी मानते हैं कि सभी के जीवन का मूल्य बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। एक सामान्य इंसान के जीवन की जो जटिलता है, उसकी जो भविष्य की योजनाएं बनाने की क्षमता है, वो शायद एक चूहे से ज्यादा हो। तो ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मिला जुला या संतुलित नजरिया पेश करते हैं।
ठीक है, ये तो ही सैद्धांतिक बात है, प्रिंसिपल्स। लेकिन इनका असर असल दुनिया में कहां दिखता है? जैसे आपने कहा, किताब फैक्ट्री फार्मिंग के बारे में बात करती है, क्या कहती है वो?
हाँ, और यहीं पर ये सिद्धांत सबसे ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। किताब बहुत विस्तार से बताती है कि मांस, अंडे और दूध के लिए आजकल जिस तरह से औद्योगिक खेती यानी फैक्ट्री फार्मिंग होती है, उसमें जानवरों को भयानक कष्ट झेलना पड़ता है।
भयानक कष्ट मतलब
अरबों जानवर, सोचिए अरबों, वो अपनी पूरी जिंदगी बेहद तंग गंदी जगहों में गुजार देते हैं, हिलने डुलने की जगह नहीं होती, उन्हें दर्दनाक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है बिना किसी दर्द निवारक के, जैसे चोंच काटना या बधिया करना। उनकी जो बुनियादी प्राकृतिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं होती।
और ये सब क्यों? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है?
डिग्राजिया का तर्क यही है कि ये सब इंसानों के बहुत मामूली फायदों के लिए होता है, जैसे थोड़ा सस्ता मांस या दूध मिलना, या बस हमारे स्वाद की आदत, या थोड़ी सी सुविधा, या कंपनियों का मुनाफा। और जब हम जानवरों की इतनी भयानक पीड़ा की तुलना इन छोटे मोटे इंसानी फायदों से करते हैं, तो डिग्राजिया के अनुसार ये नैतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं ठहरता। उनका निष्कर्ष बहुत साफ है, ज्यादातर फैक्ट्री फार्मिंग नैतिक रूप से अस्वीकार्य है और इसे खत्म होना चाहिए।
खत्म होना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा बयान है।
हाँ, और वो शाकाहार या वीगनिज्म को एक मजबूत नैतिक विकल्प के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये उस व्यवस्था का समर्थन करने से इनकार करता है।
ये तो वाकई हमारे खाने की थाली पर सीधा सवाल उठाता है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा है जानवरों पर होने वाले शोध, एनिमल रिसर्च, उसके बारे में किताब क्या कहती है? ये भी काफी विवादित विषय है।
हाँ, और ये फैक्ट्री फार्मिंग से शायद ज्यादा जटिल भी है। डिग्राजिया ये मानते हैं कि जानवरों पर हुए शोध से इंसानों को और कभी कभी दूसरे जानवरों को भी बहुत फायदे हुए हैं। नई दवाएं बनी हैं, टीके बने हैं, बीमारियों का इलाज ढूंढा गया है।
हाँ, ये तो हम सुनते हैं।
लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारा शोध जो होता है वो नैतिक रूप से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कई प्रयोगों में जानवरों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाती है, जबकि उनसे मिलने वाला फायदा या तो बहुत कम होता है या अनिश्चित होता है, या ऐसा फायदा होता है जो उतना जरूरी नहीं है, खासकर जैसे कॉस्मेटिक्स या घरेलू चीजों की टेस्टिंग के लिए जानवरों का इस्तेमाल।
तो क्या वो हर तरह के एनिमल रिसर्च पर रोक लगाने की बात करते हैं?
नहीं, यहाँ भी उनका नजरिया संतुलित है। वो पूरी तरह से रोक की बात नहीं करते, बल्कि वो 3 R's के सिद्धांत का जोरदार समर्थन करते हैं।
3 R's, वो क्या है?
पहला R है रिप्लेसमेंट, यानी जहां भी संभव हो जानवरों की जगह विकल्पों का इस्तेमाल करो, जैसे कंप्यूटर मॉडलिंग है, सेल कल्चर है, मानव ऊतकों पर टेस्ट हैं।
अच्छा।
दूसरा R है रिफाइनमेंट, यानी अगर जानवरों का इस्तेमाल करना बिल्कुल जरूरी हो तो प्रयोग के तरीकों को ऐसे बदलो कि उनकी पीड़ा और तनाव कम से कम हो, बेहतर देखभाल, दर्द निवारक वगैरह। और तीसरा R है रिडक्शन, यानी इस्तेमाल होने वाले जानवरों की संख्या को कम से कम करो, बेहतर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से या पहले के डेटा को शेयर करके।
तो मतलब शोध तभी ठीक है जब इंसानी फायदा बहुत बड़ा और निश्चित हो, कोई और रास्ता ना हो और जानवरों को कम से कम तकलीफ दी जाए। ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए।
बिल्कुल, डिग्राजिया के मुताबिक ये मानक बहुत ऊंचे होने चाहिए और मौजूदा व्यवस्था अक्सर इन कड़े मानकों पर खरी नहीं उतरती है। उनका मानना है कि हमें विकल्पों और ज्यादा रिसर्च और निवेश करना चाहिए और जानवरों के इस्तेमाल को बहुत सख्ती से रेगुलेट करना चाहिए।
समझ गया। किताब और किन मुद्दों को छूती है, जैसे मनोरंजन या पालतू जानवर?
हाँ, उन पर भी बात करती है, हालांकि शायद फैक्ट्री फार्मिंग और रिसर्च जितनी गहराई से नहीं। मनोरंजन के लिए जानवरों का इस्तेमाल, जैसे सर्कस है या रोडियो है, जहाँ जानवरों को अप्राकृतिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और अक्सर क्रूर ट्रेनिंग दी जाती है, उसे वो नैतिक रूप से गलत मानते हैं।
और चिड़ियाघर?
चिड़ियाघरों के बारे में बहस थोड़ी ज्यादा जटिल है। कुछ अच्छे चिड़ियाघर शायद संरक्षण और शिक्षा में भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वहां भी जानवरों की भलाई, उनकी जरूरतें सबसे ऊपर होनी चाहिए, ना कि सिर्फ इंसानों का मनोरंजन।
और पालतू जानवर पेट्स?
पेट्स के मामले में वो जिम्मेदार देखभाल पर बहुत जोर देते हैं। उन्हें खरीदना नहीं बल्कि आश्रयों से गोद लेना बेहतर है। उनकी शारीरिक और मानसिक जरूरतें पूरी करना, उन्हें सिर्फ एक वस्तु या संपत्ति नहीं बल्कि एक साथी समझना, और ये भी सोचना कि क्या हम वाकई उनकी देखभाल करने में सक्षम हैं।
वन्य जीवों के बारे में भी कुछ कहा है?
हाँ, वन्य जीवों और पर्यावरण के बारे में भी बात है। यहाँ कभी कभी एक मुश्किल सवाल उठता है, क्या एक अकेले जानवर के अधिकार ज्यादा जरूरी हैं या पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण? डिग्राजिया मानते हैं कि यहाँ तनाव हो सकता है और हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो दोनों का सम्मान करे जहां तक हो सके।
ठीक है, तो इस पूरी काफी लंबी और गहरी चर्चा से अगर हमें कुछ मुख्य बातें, कुछ कोर मैसेजेस निकालने हों जिन्हें सुनने वाले याद रख सकें, तो वो क्या होंगी? पहली बात,
मेरे हिसाब से पहली और सबसे जरूरी बात जो बार बार आती है, नैतिकता का आधार संवेदना है, प्रजाति नहीं। अगर कोई प्राणी दर्द, सुख, दुख महसूस कर सकता है तो वो नैतिक रूप से मायने रखता है। बस इंसान होना अपने आप में कोई जादुई नैतिक ढाल नहीं है।
ये पहली बात हुई। दूसरी?
दूसरी, प्रजातिवाद, स्पीसिज्म, एक तरह का पूर्वाग्रह है, ठीक वैसे ही जैसे नस्लवाद या लिंग भेद होता है। हम अक्सर अपनी प्रजाति इंसान को बिना किसी अच्छे नैतिक कारण के दूसरों से बेहतर या ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेते हैं।
इसका कोई उदाहरण? जैसे भारत में?
हाँ, भारत में ही देखिए, हम अक्सर पालतू कुत्तों बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं या बूचड़खानों में ले जाए जा रहे जानवरों के प्रति हमारा रवैया बिल्कुल अलग होता है। या जैसे गाय को पवित्र माना जाता है लेकिन भैंसों या बकरियों के साथ वैसा बर्ताव नहीं होता, ये दोहरा मापदंड क्यों? जबकि महसूस करने की क्षमता तो उनमें भी है। ये प्रजातिवाद का ही एक रूप है।
ये सोचने वाली बात है। तीसरी मुख्य बात,
तीसरी, जानवरों को सिर्फ ठीक से रखना यानी उनकी भलाई, वेलफेयर का ध्यान रखना ही काफी नहीं है, उनके कुछ बुनियादी हक, राइट्स भी हैं। मतलब सिर्फ उन्हें थोड़ा बेहतर पिंजरा देना या मानवीय तरीके से मारना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ चीजें उनके साथ बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, चाहे कितनी भी सफाई से क्यों ना की जाए, जैसे उन्हें बेवजह गंभीर पीड़ा देना या मनोरंजन के लिए उनका शोषण करना।
अच्छा, यानी वेलफेयर और राइट्स में फर्क है। चौथी बात,
चौथी बात है नैतिकता में एक रूपता का महत्व। अगर हम मानते हैं कि किसी एक प्राणी को बेवजह दुख देना गलत है, तो हमें वही सिद्धांत समान क्षमताओं वाले दूसरे प्राणी पर भी लागू करना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो। ये नहीं कि अपनी सुविधा के हिसाब से हम नियम बदल दें। ये हमारे रोजमर्रा के विकल्पों पर सवाल उठाता है, हम क्या खाते हैं, क्या खरीदते हैं, किसका समर्थन करते हैं।
और पांचवी?
और पांचवी बात, विज्ञान और नैतिकता साथ साथ चलते हैं। जानवरों के मन, उनकी भावनाओं, उनके सोचने समझने की क्षमताओं के बारे में हम जितना ज्यादा वैज्ञानिक रूप से जान रहे हैं, उतना ही उनके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारियों का तर्क मजबूत होता जा रहा है। ये सिर्फ कोई भावुक अपील नहीं है बल्कि ये सबूतों पर आधारित तर्क है।
क्या किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो खास तौर पर याद रह जाते हैं, जिन्हें हम कोट की तरह देख सकें, हालांकि आपने कहा कि ये अकादमिक किताब है?
हाँ, मतलब शब्दशः कोट ना भी हो, पर कुछ केंद्रीय विचार हैं जो बहुत असरदार हैं। पहला तो वही कि किसी प्राणी के नैतिक दर्जे का असली पैमाना उसकी अनुभव करने की क्षमता है, सुख दुख महसूस कर पाना। ये पूरी बहस की नींव है। दूसरा, ये विरोधाभास वाला विचार, हम ये नहीं कह सकते कि कुत्तों को बेवजह दुख देना गलत है और साथ ही उन व्यवस्थाओं का समर्थन करें जो सुअरों या मुर्गियों को कहीं ज्यादा दुख देती हैं, जबकि उनकी महसूस करने की क्षमता में कोई खास फर्क नहीं है। ये हमारे दोहरे मापदंड को सीधे पकड़ता है।
हाँ, ये बात तो है। और
तीसरा, अधिकारों की गलतफहमी को दूर करने वाला विचार। जानवरों के अधिकार का मतलब ये नहीं कि उनके साथ हूबहू इंसानों जैसा बर्ताव हो, बल्कि ये कि उनके जो बुनियादी हित हैं, जैसे पीड़ा से बचना, अपनी तरह से जीना, उनको गंभीरता से लिया जाए और सिर्फ इंसानी सुविधा या खुशी के लिए नजरअंदाज ना किया जाए। और चौथा, ये प्रगति वाली बात। नैतिक प्रगति का मतलब अक्सर यही होता है कि हम अपने नैतिक दायरे को उन प्राणियों तक फैलाएं जिन्हें हमने पहले नजरअंदाज या शोषित किया है। जैसे इतिहास में हमने गुलामी खत्म की, महिलाओं को अधिकार दिए, वैसे ही अब जानवरों की बारी है।
ये सब बातें वाकर सोचने पर मजबूर करती हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, सुनने वाले इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? ये सब जानना तो ठीक है, पर करें क्या, कुछ व्यवहारिक कदम?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और किताब इसका जवाब भी देती है। सबसे बड़ा और सीधा असर शायद हमारे खाने की आदतों पर पड़ सकता है।
खाने की आदतें कैसे?
देखिए, अगर हम मानते हैं कि फैक्ट्री फार्मिंग नैतिक रूप से गलत है, तो उसका तार्किक नतीजा ये निकलता है कि हम उन उत्पादों से बचने की कोशिश करें, शायद मांसाहार कम करें या छोड़ दें, या कम से कम ऐसे स्रोतों से लें जहां जानवरों के साथ बेहतर बर्ताव होता हो। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है। पौधा आधारित, प्लांट बेस्ड भोजन की तरफ बढ़ना एक बहुत सीधा और प्रभावी कदम हो सकता है।
अच्छा, खाने के अलावा और कहां असर पड़ सकता है? हमारी खरीदारी में?
हाँ बिल्कुल, हम उपभोक्ता के तौर पर चुनाव कर सकते हैं। हम क्रूरता मुक्त उत्पाद चुन सकते हैं, ऐसे कॉस्मेटिक्स, साबुन, शैम्पू, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जिन पर जानवरों पर परीक्षण नहीं किया गया हो। आजकल ऐसे बहुत से विकल्प मौजूद हैं।
और कपड़ों वगैरह में?
हाँ, फर या चमड़े जैसे उत्पादों से बच सकते हैं जिनके लिए जानवरों को अक्सर बहुत क्रूरता से मारा जाता है, उनके भी अब बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। हम मनोरंजन के लिए जानवरों का इस्तेमाल करने वाली जगहों जैसे कुछ तरह के सर्कस या शो का बहिष्कार कर सकते हैं।
और जो लोग पालतू जानवर रखते हैं उनके लिए भी कोई संदेश है इसमें?
हाँ, उनके लिए संदेश है, जिम्मेदार बने। जानवर खरीदने की बजाय आश्रयों से, शेल्टर से गोद लेने को प्राथमिकता दें, उनकी जरूरतें समझें और पूरी करें। सिर्फ खाना, पानी और छत नहीं, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी। उन्हें व्यायाम, खेलने का मौका और अपना साथ दें। उन्हें परिवार का सदस्य समझें, कोई खिलौना या स्टेटस सिंबल नहीं।
ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बातें, क्या बड़े स्तर पर भी कुछ किया जा सकता है?
हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो जानकारी हासिल करना और जागरूक होना ही एक बड़ा कदम है। फिर हम बेहतर पशु कल्याण कानूनों के लिए आवाज उठा सकते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से बात कर सकते हैं, जानवरों पर होने वाले शोध के विकल्पों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं का समर्थन कर सकते हैं।
और अपने आसपास?
हाँ, अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों से इस बारे में सम्मानजनक तरीके से बात कर सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं। जागरूकता फैलाना भी बदलाव लाने का एक तरीका है। हर छोटा कदम, हर चुनाव मायने रखता है, खासकर जब बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं।
बिल्कुल, तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए व्यक्तिगत रूप से इस किताब या इस विषय से जुड़ा सबसे बड़ा सबक या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे अहम बात यही है कि जानवरों के प्रति हमारा रवैया सिर्फ हमारी आदत या परंपरा या भावनाओं पर नहीं, बल्कि तर्क और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। डिग्राजिया का जो संवेदना वाला तर्क है वो मुझे बहुत तार्किक और शक्तिशाली लगता है। ये हमें अपने बनाए हुए इंसानी दायरे से बाहर देखने और सोचने पे मजबूर करता है कि क्या हम वाकई अकेले नैतिक प्राणी हैं इस धरती पर।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है या शायद कहें कि परेशान करती है, वो ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानवरों की पीड़ा से कितने अनजाने में या जानबूझकर जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे भोजन के जरिए, और फिर भी हम इस पर कितना कम सोचते हैं या बात करते हैं। डिग्राजिया का विश्लेषण हमें इस थोड़ी असुविधाजनक सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है और ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम वाकई से नज़रअंदाज करते रह सकते हैं। उनका संतुलित तरीका ये भी दिखाता है कि बदलाव मुश्किल है पर असंभव नहीं। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।